It is a privilege and a pleasure to be with you here in Miri, Pakistan.
ये मेरे लिए बड़ी खुशी और एजाज की बात है, शर्फ की बात है कि मैं आपके साथ यहाँ पर मरी में आपके साथ हूँ.
I am excited about the excellent subject assigned to me for this conference, the doctrine of God.
और मैं बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ इस मौजू के लिए जो कि खुदा के इल्म यानी इल्मुल खुदा के मुतालिक है.
I want to commend whoever chose the title for this introductory speech.
और आज हम इस मौजू पर जिसके बारे में मैंने आपको मैंने पहले ही बता दिया इसके बारे में बातचीत करेंगे.
Behold your God.
और आज का जो हमारा पैगाम का मौजू है, चूंकि इनके पास लिस्ट है, आपके पास लिस्ट नहीं है, उसका है देख तेरा खुदा यानी Behold your God.
In this conference, I recommend that you take notes.
और मेरी तजवीज ये है इस कॉन्फ्रेंस में कि आप लाजमी तौर पर लिखें.
This will help you over the next 3 days and especially afterwards.
और ये आपको मदद देगा अगले 3 दिनों में सीखने के लिए और उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी.
During this conference, I would be disappointed if there were no questions asked me.
और मैं बहुत ज्यादा मायूस हूंगा अगर इस कॉन्फ्रेंस में मुझसे कोई भी सवाल ना पूछा जाए.
That is, I really welcome questions.
और मैं इसलिए आपको खुशामदीद कहता हूं और खैर मकदम करता हूं कि आप मुझसे सवाल पूछें.
Isaiah 40 is the first chapter of the second part of Isaiah.
यसाया 40वां बाब जो है वो यसाया की किताब का दूसरा हिस्से का पहला बाब है.
The second part of Isaiah consists of chapters 40 through 66.
और ये दूसरा हिस्सा ये बाब 40 से शुरू होकर 66वें बाब तक जाता है.
Arslan read Isaiah 40 verses 1 through 18.
जो मैंने हवाला पढ़ा वो यसाया 40 से 18 तक पढ़ा.
This is a sort of prologue to the second part of Isaiah.
और ये दूसरे हिस्से के समझने के पूरा एक दिबाचा है.
It introduces many of Isaiah's major themes.
और ये यसाया की किताब के बड़े जो मौजू हैं उनको बयान करता है.
Bang in the middle of the prologue to the second half of Isaiah.
और इसके दूसरे हिस्से के इसके दूसरे हिस्से में
At the end of verse 9 is the statement Behold your God.
और जब हम इसकी नवीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है देखो अपना खुदा.
From this key phrase
और ये जो कलीदी आयत है
we shall consider the whole of the prologue to Isaiah 40 through 66.
और फिर हम ये देखते हैं कि जो 40 से 66 बाब है उसका सारा दिबाचा है इन्हीं आयत में.
What these 18 verses teach us about our covenant God.
और जो 18 आयत हमने पढ़ी है ये हमारे बाअहद खुदा के बारे में क्या सिखाती हैं?
We will look first at some of God's perfections.
अभी हम खुदा की कुछ जो कामिलियतें हैं उनके बारे में गौर करेंगे.
Then God's persons.
फिर हम खुदा की शख्सियात के बारे में बात करेंगे.
Then preaching about God.
और फिर खुदा के बारे में मुनादी के बारे में सीखेंगे.
All unfolding, behold our God.
और ये सब कुछ हम पर इस बात को खोलेगा कि देखो अपना खुदा.
The first divine perfection spoken of in our passage is omnipotence.
और हमें यहां पर जो सबसे पहली जो खूबी खुदा की या कामिलियत नजर आती है वो उसकी हमदानी है.
God's omnipotence is his infinite power.
और ये उसकी कामिल कुदरत है.
To do whatever is consistent with his own being.
और ये उसकी जात के साथ है.
Including the acts he has eternally determined to do.
और हम ये देखते हैं कि ये उसकी इस बात को खूबी को जाहिर करता है कि वो सब कुछ जानता है और शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ उसने मुकर्रर किया है.
And even the acts he has chosen not to do.
और फिर ये भी कि वो कौन से काम नहीं करता यानी किन बातों का उसने फैसला नहीं किया.
Our passage speaks of the former.
Yes.
Verse 10.
Okay. और फिर जो है 10वीं आयत में हम देखते हैं देखो खुदावंद बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा. देखो उसका सिला उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने.
And the first half of verse 12.
और फिर हम 12वीं आयत किसने समुंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश से की और जमीन की गर्द को पैमाने में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला.
After God's omnipotence, God, the text refers to God's omnipresence.
और यहां से ये हवाला जो है ये हमें खुदा की हमदानी के साथ साथ खुदा की हमजाई के बारे में यानी खुदा हर जगह मौजूद है ये सिखाता है.
God's omnipresence is the truth that He is everywhere present in His creation.
और यहाँ से हम सीखते हैं कि खुदा इस पूरी कायनात में हर जगह मौजूद है. यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ वो मौजूद नहीं है.
At all times.
और हर वक्त.
With all of His divine being.
और उसकी पूरी हस्ती जो हस्ती जो कामिल हस्ती है वो अपनी पूरी कुदरत के साथ अपनी कामिल कुदरत के साथ वहाँ पर मौजूद है.
And way more than that.
और इससे बढ़कर
that God fills His own divine being.
और इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि खुदा किस तरह खुद जो है वो मामूर है अपनी जात में.
Isaiah's prologue places great emphasis on God's omnipresence and immensity.
और फिर ये जो हवाला हमने पढ़ा है इसी में हम ये देखते हैं कि ये जो हवाला ये खुदा के हमेशा रहने के बारे में भी बयान करता है. यानी हमेशा जो कायम रहने वाला है.
He is present in the oceans, sky and dry land.
और फिर हम देखते हैं कि उसने किस तरह चीजों की तखलीक की. यानी पहाड़ों को बनाया या समुद्र को बनाया.
Verse 12.
किसने समुद्र को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश से की और जमीन की गर्द को पैमाने में भरा और पहाड़ों को पड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला.
He is present with the nations, islands, forests of Lebanon and all animals.
और हम ये देखते हैं कि वो ना सिर्फ लबनान बल्कि कौमों जानवरों और हर एक चीज के साथ यानी उसकी हमें मौजूदगी जो है वो नजर आती है.
Verses 15, 16 and 17.
15वीं 16वीं 17वीं. देखो कौमें डोल की एक बूंद बूंद की मानिंद है और तराजू की एक बारीक और तराजू की बारीक गर्द की मानिंद गिनी जाती है. देखो वो जजीरों के एक जर्रे की मानिंद उठा लेता है. लबनान ईंधन के लिए काफी नहीं और उसके जानवर शोक की कुर्बानी के लिए बस नहीं.
After God's omnipotence and omnipresence,
और इस तरह खुदा की हमदानी और हमजाई के साथ साथ
we come to God's omniscience.
और फिर हम ये देखते हैं कि खुदा हर एक चीज को जानता है.
God's omniscience is His exhaustive knowledge of the universe.
और इसमें मतलब कि इस कायनात का जो पूरा इल्म है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है.
Plus all possibilities.
और इस मतलब तमाम तरह के मुमकिनात जो हम सोच सकते हैं इसका भी इल्म जो है वो किसको है? खुदा को.
And way more than this, His own infinite being.
और इससे बढ़कर उसकी जो जात है वो कामिल है.
Here we are dealing with God's mind or intellectual perfections.
और यहाँ हम खुदा की जो जो कुछ खुदा सोचता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं या सीखते हैं.
His knowledge, wisdom and understanding.
उसका इल्म, कुदरत और इरफान.
Verse 13 refers to His counsel and teaching.
किसने खुदावंद की रूह की हिदायत की या उसका मुशीर होकर उसे सिखाया. 13वीं आयत.
Verse 14 refers to His counsel, instruction, people being taught, knowledge, understanding.
और फिर 14वीं आयत. उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे.
After these first three perfections,
और ये जो तीन खसूसियात मैंने आपको बताई हैं यानी खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा हर चीज को जानता है और फिर ये कि खुदा के पास सब चीजों की जो है वो खुदा को सब चीजों का इल्म है.
We come to God's searing justice.
और फिर हम खुदा के इंसाफ की तरफ आते हैं.
God's infinite justice is His unswerving faithfulness.
और हम देखते हैं कि खुदा मुनसिफ खुदा है और वो वफादारी यानी हमसे वफादारी की सूरत में अपने अदल को जाहिर करता है.
Unswerving faithfulness to himself.
और वो खुद से भी वफादार है.
As his only standard of righteousness.
और उसने रास्तबाजी का एक मयार जो है वो मुकर्रर किया है.
Verse 14 asks.
जो 14वीं आयत है वो पूछती है या सवाल करती है कि उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे.
नंबर 5.
पांचवी बात.
वी कम टू गॉड्स सेल्फ सफिशिएंसी.
और फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है उसे किसी की जरूरत नहीं है.
यू एंड आई टर्न टू अदर्स फॉर काउंसिल एंड एडवाइस.
और हम दूसरों की मशवरत और कहने की सलाह के लिए तलबगार होते हैं.
On various matters at certain times.
और ये बहुत दफा हमारे साथ होता है कि बड़ी दफा हम दूसरे लोगों से सलाह लेते हैं.
God never asks for advice.
खुदा जो है वो किसी से नसीहत नहीं लेता या किसी की सलाह नहीं लेता.
Verses 13 and 14.
13 और 14. किसने खुदावंद की रूह की हिदायत की या उसका मशीर होकर उसे सिखाया. उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे.
For he is entirely self-sufficient.
तो हम देखते हैं कि वो किसी दूसरे पर इनहसार नहीं करता किसी भी बात के लिए.
In absolutely all things,
और तमाम चीजों में,
at all times,
हर वक्त,
he is utterly self-sufficient in his knowledge and justice.
और वो अपने अदल और इरफान में जो है वो कामिल है.
Indeed, in all his infinite attributes and being.
और हम देखते हैं कि वो अपनी हस्ती में और अपनी सिफात में जो है वो कामिल है.
So he never needs counsel or advice.
उसे किसी के सलाह मशवरे की जरूरत नहीं होती.
From human beings or holy angels.
या इंसानों से या पाक फरिश्तों से.
We shall say more about God's attributes.
और जो है हम खुदा की सफात के बारे में जानते हैं.
In classes 3 and 4.
और हम आने दिनों में सीखेंगे इनके बारे में.
Thus God is incomparable.
हम देखते हैं खुदा जो है वो तकसीम नहीं हो सकता.
He is incomparable in his omnipotence.
इसका मतलब यह कि खुदा का किसी से मुआजना नहीं किया जा सकता.
Omnipresence.
यानी हम अजाई में, हम अदानी में, हर चीज का इल्म रखने में, कायम रहने में.
Omniscience.
Yes, I already told
you. Oh, you gave all 5.
Yeah.
He's a step ahead of me. Yea, in all God's perfections.
और ये सारी जो है ये खुदा की कामलियतें हैं, यानी हर चीज में वो कामिल है.
Verse 18. Behold your God.
अब 18वीं देखेंगे.
Verse 18.
पस तुम खुदा को किस से तशबीह दोगे और कौन सी चीज उससे मुशाबे ठहराओगे?
Arising out of the fullness of God's incomparable attributes.
और इस तरह भी जब हम इस सिफ्त पर गौर करें कि खुदा का किसी से मुआजना नहीं किया जा सकता.
Is God's eternal decree.
तो हम देखते हैं खुदा ने सब चीजें जो है वो अजल से मुकर्रर की हैं.
God's eternal decree is his all-encompassing plan or purpose with absolutely everything.
और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हम सीखते हैं कि खुदा का अज़ली इरादा वो सारी चीजें हैं जो वकूफ पज़ीर होती हैं इस दुनिया में.
God's decree was formulated before the foundation of the earth.
और जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने ये सारी चीजें, यानी जो खुदा का अज़ली इरादा है, वो इस जमीन के बनाए जाने से पहले जो है वो तैयार था.
The infinitely rich God.
और ये जो बहुत ज्यादा हर चीज से भरपूर खुदा है.
Is not only self-sufficient in his attributes.
और वो ना सिर्फ अपनी सिफात में जो है वो कामिल है.
But he is also self-sufficient in his eternal decree.
और इसी तरह से वो जो भी इरादा करता है उसमें भी वो कामिल है, यानी उसमें वो पीछे नहीं हटता.
He needed no advice.
उसे किसी की सलाह मशवरे की जरूरत नहीं होती.
Verses 13 and 14.
दोबारा से 13वीं और 14वीं आयत. किसने खुदावंद की रूह की हिदायत की या उसका मशीर होकर उसे सिखाया? उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे? और आगे आप पढ़ सकते हैं.
In its context, this includes God's creation.
और यहां हमें खुदा की तखलीक के बारे में हम यहां पर सीखेंगे.
His plan to bring everything into existence in the beginning.
और हम देखते हैं कि खुदा ने जो कुछ बनाया उसकी जो कुछ इब्तिदा में बनाया उसका एक बकायदा जो है वो उसको उसने उसका इरादा किया.
God's eternal decree is his plan for providence.
और खुदा का जो असली इरादा है ये उसकी परवरदिगारी को भी जाहिर करता है.
His purpose to uphold and govern all things.
और वो सब चीजों को संभालता और कायम रखता है, यानी उन्हें चलाता है आम जबान में.
This is class 6.
ये उसकी ये छठी बात है.
God's eternal decree includes his redemption.
और खुदा जो है हम जानते हैं कि हमारा निजात देने वाला खुदा है.
His work of saving his people and church.
और जो खुदा का अज़ली इरादा उसमें अपनी कलीसिया को निजात देने का भी इरादा जो है वो खुदा का शामिल है.
Verse 11.
वो चौपान की मानंद अपना गला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजू में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा.
God's eternal decree and plan.
खुदा का जो अज़ली इरादा है और मंसूबा है.
Is then effected in time.
ये तारीख को मुतासिर करता है.
In God's creating, governing the world.
और खुदा ना सिर्फ ज़मीन को खुदा ने बनाया बल्कि उस पर हुकूमत भी करता है.
And redeeming and saving his people.
और फिर अपने लोगों को बचाता भी है.
Behold your God.
देखो अपना खुदा.
Our passage also speaks of divine persons plural.
और ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं कि खुदा जो हम सीखेंगे इन दिनों में कि खुदा शख्सियत रखता है.
It speaks of the person of our Lord Jesus Christ.
और ये हमारे खुदा यीशु मसीह के बारे में भी बात करता है.
We see this in Isaiah 40 verses 3 through 5.
और हम तीसरी से पांचवीं आयत में इसके बारे में पढ़ते हैं हमारे खुदा यीशु मसीह के बारे में. पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की रात درست کرو, صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو, ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے, اور ہر ایک ٹیڑی چیز سیدھی اور ہر ایک نہ ہموار جگہ ہموار کی جائے, اور خدا ان کا جلال اشکارا ہوگا اور ہر ایک بشر اس کو دیکھے گا کیونکہ خدا نے اپنے منہ سے فرمایا ہے.
These verses are quoted in Luke 3 verses 4 through 6.
اور یہ آ جائے لوکا کی انجیل کے تیسرے باب میں بھی مندرج ہے جہاں پہ ہم یوحنا کا بیان پڑھتے ہیں, یوحنا استباغی کا.
So whose is the voice that prepares the way for another person?
اور یہ کون سی آواز ہے جو خداوند کی راہ کو تیار کرتی ہے؟
John the Baptist.
یوحنا استباغی.
Whose way does the voice John the Baptist prepare?
یوحنا کس کا راہ تیار کر رہا ہے؟
He prepares the way of the Lord Jesus.
وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کرتا ہے.
What does Isaiah 40 verse 3 call Jesus Christ?
اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کا یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا یہ یسوع مسیح کے بارے میں اور کیا کہتا ہے؟
It calls him Lord or Jehovah.
اور وہ اسے خداوند یا یہوہ کہتا ہے.
That means I am that I am.
یعنی میں جو ہوں سو میں ہوں, یہاں پر لفظ جو خداوند استعمال ہوا ہے یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
A title only ever used of the true God.
اور یہ جو لفظ ہے یعنی خداوند یا یہوہ, یہ صرف اور صرف سچے خدا کے لیے استعمال ہوا ہے.
Verse 3 also calls Jesus our God.
اور جو تیسری آیت ہے یہ یسوع مسیح کو ہمارا خدا بھی جو ہے وہ بیان کرتی ہے.
So verse 3 states twice the deity of Jesus Christ.
یہ آیت جو تیسری آیت ہے دو بار خداوند یسوع مسیح کو خدا کے طور پر پیش کرتی ہے.
It is taught even in the Old Testament.
اور اس کے علاوہ ہم پرانے عہد نامے میں ہر جگہ پر بھی یہ دیکھتے ہیں.
Behold your God.
دیکھو اپنا خدا.
Jesus Christ.
یسوع مسیح.
Fully God and fully man.
کامل خدا اور کامل انسان.
Seeing Jesus Christ, what is it called in verse 5?
اور دیکھیں پانچویں آیت میں کیا لکھا ہے, اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور ہر ایک بشر اس کو دیکھے گا کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے. یہاں پہ بھی لفظ خداوند آیا ہے.
Seeing Jesus Christ is beholding the glory of God.
جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں.
The divine brilliance and effulgence shines in Jesus.
اور خدا کی جو ساری کاملیتیں ہیں اس کا جو قدرت کا اظہار ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح میں.
Here we turn from the prologue to Isaiah 40 through 66.
اور جب ہم اس دباچے جس کے بارے میں نے کہا کہ 40 سے 66 میں یہ درج ہے,
to the prologue to John's gospel.
اور پھر ہم یوحنا کی انجیل میں بھی اسے دیکھتے ہیں.
John 1 verse 14.
یوحنا کی انجیل پہلا باب 14 آیت, اور کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال.
Notice the reference to revelation or unveiling or disclosing.
اور یہاں پر یہ بات ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے جو ہم پر ظاہر کی گئی ہے, یعنی کوئی مکاشفہ ہم پر کھولا گیا ہے.
Isaiah 40 verse 5.
عیسایہ 40:5. Just a minute. ہاں جی. ہاں جی, اس کے بعد ہم پڑھیں گے یوحنا 1:18. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا.
We will say more about that in class 2 on the knowability of God.
اور پھر ہم خدا کی جاننے کے جو اس کی قابلیت ہے اس کے بارے میں, خصوصیت ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے.
Behold your God revealed in Jesus Christ.
دیکھو اپنا خدا خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے.
There is a second passage in Isaiah 40 that speaks directly of Christ.
یہ دوسرا حوالہ ہے یسایہ کی کتاب میں جو یسوع مسیح کے بارے میں براہ راست بیان کرتا ہے.
Verse 10 calls him the Lord God.
اور جو آیت 10 ہے وہ اسے خداوند خدا کے طور پر پیش کرتی ہے. دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا.
Here we have his deity as Jehovah.
اور یہاں میں اس کی بطور یہوہ جو ہے وہ خدائی یعنی خدا ہونے کی جو اس کی بات ہے وہ نظر آتی ہے.
And his work as the good shepherd.
اور پھر کہ یہ وہ اچھا چوپان ہے یا اچھا چرواہا ہے.
The church is his flock of sheep.
اور کلیسیا جو ہے وہ بھیڑوں کا کیا ہے, غلہ ہے خداوند یسوع مسیح کا.
And the good shepherd lays down his life for his sheep.
اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے.
John 10 verses 11 and 15.
یوحنا کی انجیل جان 10
you could read one of the verses or both. John 10, verse 11.
Okay. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है.
Isaiah 40 says that the good shepherd has a special care for two types of people.
और जो ग्यारहवीं आयत है हमारे हवाले की, वो बताती है कि ये जो अच्छा चौपान है, ये दो तरह से अपने लोगों की जो दो तरह से अपने लोगों का ख्याल रखेगा.
One, pregnant mothers.
पहले तौर पर हमला खवातीन का.
Two, lambs, the children of believers.
और फिर जो है वो बड़ों को यानी ईमानदारों के बच्चों को उनकी केयर जो है वो करेगा यानी इनका ख्याल रखेगा.
Because God's covenant is with believers and their elect seed.
और अब क्योंकि हम देखते हैं, जानते हैं बाइबल मुकद्दस से कि खुदा का अहद उसके लोगों और उनकी औलाद से है.
Isaiah 40 verse 11.
वो चौपान के मारे अपना गला चलाएगा, वो बर्रों को अपने बाजों में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा और उनको जो दूध पिलाती है आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा.
Behold your God.
देखो अपना खुदा.
Our passage also speaks of the Holy Spirit.
और हमारा आज का जो हवाला वो रूह कुद्स के बारे में बयान करता है.
Verse 13.
तेरहवीं आयत. किसने खुदावंद की रूह की हिदायत की या उसका मुशीर होकर उसे सिखाया?
Verse 14.
उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे?
The Holy Spirit is a person, not an impersonal force.
जो रूह कुद्स है वो कोई जो है वो तहरीक नहीं है, कुवत नहीं है, बल्कि क्या है, एक शख्सियत है.
He possesses knowledge, understanding and justice.
और वो भी जो है वो इंसाफ और हिकमत और इरफान से मामूर है या भरपूर है.
The Holy Spirit needs no counsel or advice from any man or angel.
रूह कुद्स को किसी भी फरिश्ते से, किसी भी इंसान से सलाह मशवरा लेने की जरूरत नहीं है.
He is a divine person because he is omniscient.
और वो चूंकि खुदा है इसलिए वो भी इलाही खसूसियात जो है वो रखता है.
And perfectly just and utterly self-sufficient.
और वो भी कामिल तौर पर आदिल है और किसी दूसरे पर इन्हसार नहीं करता.
Not only are there two passages in Isaiah 40 on Christ,
और हम ये देखते हैं कि ये जो हवाला है वो किस तरह मसीह के बारे में,
but there are two persons in Isaiah 40, two passages on Isaiah 40 on the Holy Spirit.
और हमने इसमें रूह कुद्स के बारे में भी सीखा है.
The second passage is verses 6 and 7.
जो दूसरा हिस्सा है वो 16वीं और 17वीं आयत है. लुबनान ईंधन के लिए काफी नहीं और उसके जानवर सोखती कुर्बानी के लिए बस नहीं, सब कौमें उसकी नजर में हीच है, बल्कि वो उसके नजदीक बतालत और नाचीज से भी कमतर गिनी जाती है. 6 and 7. छठी और सातवीं आयत. एक आवाज आई कि मनादी करो. मैंने कहा मैं क्या मनादी करूं, हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानंद. घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है, यकीनन लोग घास हैं.
This is the image, grass and flower in a field.
और यहां जो दो मिसालें इस्तेमाल की गई हैं उनमें से एक फूल की और दूसरी जो है वो घास की जो है हमें नजर आती है.
A hot strong wind withers it.
और एक गर्म हवा जो है, गर्म हवा का झोंका जो इसको बर्बाद कर सकता है.
This is the spiritual reality pictured by the image.
और यहां पर एक रूहानी हकीकत जो है वो नजर आती है.
Man and his supposed goodness and virtues are like grass and flower in a field.
और इंसान के अंदर जो नेकी करने की खसूसियात है वो घास और फूल के मानंद है.
Then the spirit of the Lord, hot and strong,
और इस तरह से जो रूह कुद्स है,
withers and exposes man's supposed goodness.
और इसी तरह से यहां पर हमें भलाई के, इंसान की भलाई के बारे में बात नजर आती है.
Because man is fallen, sinful and depraved.
और इंसान चूंकि गुनाह की वजह से बरगश्त के उसकी सरिश्त में गुनाह है, तो रूह कुद्स भी जो है वो ऐसे ही हवा की तरह जो है वो काम करता है.
That is why we need Jesus as savior from sin and death.
और इसीलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है जो हमें मौत से जो है वो बचाए और गुनाह से.
Now think, beloved.
इसलिए मेरे अजीजों,
the Father is God,
जो बाप है यानी खुदा जाए, खुदा बाप जाए वो खुदा है.
The Son is God, Isaiah 40 says so twice.
और जिस तरह आपने यशायाह में दो बार पढ़ा कि इस तरह बेटा भी जाए वो भी कामिल खुदा है.
The Spirit of the Lord is God,
और इस तरह से खुदा का रूह जो है वो भी कामिल खुदा है.
Isaiah 40 says so twice.
और ये बात दो बार यहां पर बयान हुई है.
Three divine persons,
तीन जो है वो कामिल या इलाही शख्सियात के बारे में जिक्र है यहां पर.
But God is one in His divine being or essence.
लेकिन खुदा अपनी हस्ती के अतबार से जाए अपने जोहर के अतबार से एक है.
This is the truth of the Holy Trinity.
और ये पाक तस्लीस की हकीकत है.
In basic seed form in Isaiah 40.
और यहाँ पर इसी बात को समझने के लिए कहले के हमें समझाया गया है.
Even in the Old Testament.
पुराने अदामे में.
Behold your God.
देखो अपना खुदा.
We'll say more about this in class 5 on the Holy Trinity.
और फिर हम जब पाक तस्लीस के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम ये सब सीखेंगे.
Having looked at God's perfections and persons,
और जब हमने खुदा के कामियतों और उसकी शख्सियत पर गौर किया,
we turn to preaching.
फिर हम मनादी की तरफ आते हैं.
This passage has a lot to say about preaching.
और इस हवाले में बहुत कुछ जो है वो मनादी के ताल्लुक से है.
We have here a summary of the preaching of John the Baptist.
और फिर जो है हमें यहाँ पर यूहन्ना स्तबाकी की मनादी का खुलासा नजर आता है.
Just prior to Christ's public ministry.
यीशु मसीह की मनादी अवामी मनादी से पहले.
His preaching prepared the way for the coming of Jesus the Messiah.
यूहन्ना स्तबाकी की जो मनादी है वो आने वाले मसीहा के लिए राह तैयार करती है.
I repeat, we have here him preaching Jesus' deity.
और फिर जब हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के जो अलूहियत है उसको जाहिर करता है या बयान करता है.
Verse 3.
तीसरी आयत, पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो.
John preached that Jesus was the divine king.
और यूहन्ना जो है वो ये बयान करता है कि यीशु मसीह जो है वो इलाही बादशाह है.
Verse 4.
चौथी आयत, हर एक निशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नामवार जगह हमवार की जाए.
John preached that Jesus was the revelation of Jehovah's glory.
और यूहन्ना बयान करता है कि यीशु मसीह जो है वो यहोवा के जलाल का जो है वो मुकाशवा है.
Verse 5.
पांचवी आयत, और खुदावंद का जलाल आशकारा होगा और हर एक बशर उसको देखेगा क्योंकि खुदावंद अपने मुंह से फरमाया है.
In preaching Christ,
और मसीह की मनादी में,
John the Baptist also had to preach of man's sinful, lost condition.
और यूहन्ना ना सिर्फ आने वाले मसीह के बारे में बताता है जो इलाही बादशाह है, बल्कि वो इंसान की गुनाह आलूदा फितरत के बारे में भी बयान करता है.
Why he needed Jesus as savior?
कि इंसान को क्यों यीशु मसीह की जरूरत है?
There is an exchange between God and John the Baptist in verse 6.
और आज जो 6 है हम देखते हैं यहाँ पर एक तबादला जो है वो पेश किया गया है.
God, John the Baptist, God, could you? In verse 6.
Okay. तो जब हम छठिया देखते तो वहां पर लिखा है एक आवाज है कि मनादी कर, तो ये खुदा की बात है यानी खुदा. फिर मैंने कहा मैं क्या मनादी करूं, यूहन्ना, और फिर हर बशर घास की मानद है, फूल कुमलाता है, और फिर लिखा है खुदावन की आवाज पर चलती है, यकीनन लोग घास है. तो यहाँ पर हमें दो बार खुदा के बारे में और एक बार यूहन्ना के बारे में पता चलता है.
Then God continues telling John the Baptist and preachers today what to preach.
और इसी तरह से खुदा जो है वो ना सिर्फ यूहन्ना को बल्कि आज के जो मुनाद है यानी जो पादरी साहबान है उनको भी बताता है कि आज क्या मुनादी की जाए.
Verse 7 and verse 8.
और सातवीं आठ आयत में, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, खुदा उनकी आवाज पर चलती है, यकीनन लोग घास है. हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है.
This passage was used by great effect by John, by Martin Luther.
और ये जो हवाला है ये इसने मार्टिन लूथर की जिंदगी में बड़ा काम किया.
At the end of his greatest book called The Bondage of the Will.
और मार्टिन लूथर की बहुत जो एक बड़ी मशहूर जो है वो शोराफा किताब है Bondage of the Will, यानी हमारी मर्जी जो है वो गुलाम है.
So there are two sides to preaching in this passage.
और इस हवाले में हमें मुनादी के दो पहलू नजर आते हैं या दो रुख नजर आते हैं.
Side one, behold your God.
पहला रुख जो है वो बयान करता है देखो अपना खुदा.
Glorious attributes and eternal decree.
खुदा की जलाली जो है वो कामलियतें और उसके सिफात.
Three divine persons and mighty works in Christ, the Good Shepherd.
खुदा में तीन शख्स और फिर उनके जबरदस्त और बड़े काम.
Side two, man.
और जो दूसरा रुख है इस हवाले या मनादी का वो है इंसान.
And his total depravity withered by the wind of the Holy Spirit.
और हम देखते हैं कि इंसान की जो गुनाह करने की जो सलाहियत है यानी जो हमारी नाअहली है, कामिल बिगाड़ जो हमारी फितरत का कि जिसकी वजह से हम गुनाह करते रहते हैं, वो रूल कुछ की वजह से तब्दील हो जाती है.
We come to the second passage on preaching.
और अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं.
This time it is not addressed to John the Baptist.
ये हमारे जो यूहन्ना के लिए इस्तबागी के लिए नहीं है.
That's verses 3 through 8.
तीसरी से आठवीं आयत.
But this preaching is to Jerusalem, God's church.
और ये यरूशलेम यानी खुदा की कलीसिया के लिए है.
In verses 9 through 11.
और फिर नवी और दसवीं आयत में.
Again, the heart of the message is Jesus Christ.
और इस सारे पैगाम का जो असल में मरकज है वो यीशु मसीह है.
Christ's divine nature and saving work.
खुदा की खुदा यीशु मसीह की इलाही जात और उसका काम.
As the good shepherd, verses 10 and 11.
और दसवीं ग्यारहवीं आयत में कि वो अच्छा चौपान है.
Behold your God in Jesus Christ.
देखो अपना खुदा यीशु मसीह में.
Is the message of preaching.
ये हमारी मुनादी का जो है वो मौजू है.
Now notice with me that this is the gospel or good news.
तो अब मेरी बात पर गौर करें कि यही जो है ये खुशखबरी है.
In Urdu, this is Bushra.
it is in Arabic.
Arabic.
हाँ. Bushra. तो अरबी में जो good news है यानी अच्छी खबर जो है या अंजील है उसको Bushra कहा जाता है.
Good tidings is mentioned twice in verse 9.
और जो नवी आयत है उसमें दो बार खुशी की खबर जो है यानी खुशखबरी जो है वो सुनाई गई है.
In the New Testament, this is translated gospel.
और नए अहदनामे में इसका तर्जुमा जो है इसके लिए जो लफ्ज है वो इंजील इस्तेमाल किया गया है.
A key word in the New Testament.
एक खास लफ्ज कुलीदी लफ्ज नए अहदनामे में.
Which begins with four gospel accounts.
और जो कि चार अनाजील से शुरू होता है.
This is called the gospel of the kingdom.
और ये बादशाही की जो है ये मनाती है इंजील है.
Which the church preaches and proclaims.
जिसकी कलीसिया जो है वो मनाती और तशहीर करती है.
Verse 10 says,
दसवीं आयत कहती है बयान करती है,
His arm shall rule for him.
के देखो खुदा उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा.
Rule is the activity of a king.
और आपको पता है कि जो सल्तनत करना है ये इख्तियार जो है वो बादशाह के पास होता है.
A king has a kingdom.
वो बादशाह जिसके पास बादशाही होती है.
God is the kingdom of God.
खुदा जो अपनी बादशाही का बादशाह है.
Jesus preached the gospel of the kingdom of God.
और यीशु मसीह ने आसमान की बातचीत की खुदा की बातचीत की मनादी की.
Mark 1 verse 14 for example.
उसका जो हवाला है यानी वो मरकस की इंजील के पहले बाब में मिलता है.
This is what the New Testament church must preach far and wide.
इसलिए जो कलीसिया है उसको ये सारा जो है ये मनादी करनी चाहिए.
Isaiah 40 verse 9 says in effect.
जिस तरह आप देखते हैं नवी आयत में ऐसे ही उनको खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाए और यरूशलेम को बशारत देने वाली जोर से अपनी आवाज बुलंद कर. तो ये कलीसिया के लिए जो है हमारे लिए पैगाम है.
फाइंड ए लॉफ्टी एलिवेशन.
हमें ऊंची जगह ढूंढनी है.
एंड शाउट आउट द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट.
और यीशु मसीह की खुशखबरी सुनानी है.
लेट द जेंटाइल्स हियर इट.
ताकि गैर को मैं सुने.
नॉट ओनली द ज्यूज.
ना सिर्फ यहूदी सुने.
वर्स 5 सेज वी प्रीच टू क्वोट All flesh, everyone.
और फिर पांचवी आयत में दोबारा से कि हर एक बशर उसको देखेगा.
The good news of the kingdom of God is for Gentiles as well as Jews.
और जो खुशखबरी की मनादी है यानी यीशु मसीह की जो इंजील है वो ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि गैर कौमों के लिए भी है.
All nations.
तमाम कौमों के लिए.
Isaiah 41 through 18 has a third passage on preaching.
और ये जो हमने हवाला पढ़ा है यसाया 40 1 से 18 ये मनाती के लिए जो है ये तीसरा हवाला पढ़ा.
The church is called to preach comfort.
खुदा की कलीसिया जो है ये उनके लिए है कि वो मनाती करे इत्मीनान की या तसल्ली की.
Comfort for God's covenant people.
उन लोगों के लिए जो खुदा की उम्मत के लोग हैं खुदा के अहद के लोग हैं.
Literally preach to people's hearts.
यानी इसका मतलब यह है कि खुदा जो कलीसिया है वो खुदा के लोगों के दिलों से जो है वो कलाम करे.
This is the exhortation to preachers.
और ये जो मुनाद है बारी सबारे उनके लिए नसीहत है.
Verse 1.
पहली आयत. तसल्ली दो तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो तुम्हारा खुदा फरमाता है.
Particularly preach comfort to people when they specially need it.
और ये खास तौर पर मुनाद हजरात यानी बाजी सबानों के लिए है कि वो लोगों को तसल्ली दे जब उन्हें उसकी जरूरत है.
Such as when they have been chastised for their sins.
और जब वो अपने गुनाहों पर जो है वो पछता रहे हो.
This painful chastisement is over.
और ये फिर जो सारा दर्दनाक जो कह लें कि पछतावा ये खत्म हो जाता है.
Verse 2.
यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए.
God chastises believers out of his love for us.
और खुदा जो है वो हमारे पशिमानी पर क्या करता है, हमें तसल्ली देता है, हमें प्यार करता है, अपनी मोहब्बत जाहिर करता है हम पर.
To bring us to our spiritual senses.
ताकि हम जो है वो रूहानी जो है वो बातों को महसूस करें.
And deepen our repentance.
और जो पूरे दिल से यानी गहरे तौर पर हम जो है वो तौबा करें.
God does not punish his people.
खुदा अपने लोगों को सजा नहीं देता.
Because God punished his son.
क्योंकि खुदा ने इस सब की सजा किसको दी, अपने बेटे को.
Isaiah 53 especially speaks of this.
यसाया जो है वो 53:53 इसी पर बात करता है.
Our sins were laid on Jesus Christ.
हमारा जो गुनाह था उसका सारा बोझ किस पर लादा गया.
And he was wounded for our transgressions.
हमारी खताओं के लिए घायल किया गया.
The suffering servant bore our punishment.
जो दुख उठाने वाला खादम है उसने हमारी खातर ये सारे जो गुनाह है उनको अपने ऊपर उठाया.
So when we say behold your God,
और जब हम कहते हैं देखो अपना खुदा,
we say behold your God in Jesus Christ.
तो इसका मतलब हम ये कह रहे थे कि देखो अपना खुदा यीशु मसीह में.
And especially behold your God on the cross.
और फिर हम ये कहते हैं कि खास तौर पर देखो अपना खुदा यीशु मसीह में सलीब पर.
And he rose again on the third day.
और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा.
Amen.
Amen.